नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय बजट पर मीडिया से बातचीत में इसे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की प्रतिबद्धता को साकार करने वाला बताया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्रीय बजट में उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए 10,228 करोड़ रुपए का प्रावधान। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। और मौसम विभाग ने बांसवाड़ा, बारा और भीलवाड़ा जिले के लिए बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय बजट को नए भारत का निर्माण और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की प्रतिबद्धता को साकार करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में नए भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाने की प्रतिबद्धता का भी पूरा ध्यान रखा गया है। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री कार्यालय में बजट पर मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति केंद्रित इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और सर्विस सेक्टर पर फोकस बढ़ाने वाले प्रावधान किए गए हैं।
यह बजट नए भारत की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। युवा शक्ति केंद्रित इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले प्रावधान किए गए हैं। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी का गठन होने और सर्विस सेक्टर पर फोकस बढ़ाने से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री जैसे क्षेत्रों में 1,00,000 एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल तैयार करने और 1,50,000 केयर गिवर्स को प्रशिक्षण देने की घोषणा भी युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने, कृषि अवसंरचना और बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाने और जोखिम घटाने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि बजट ने देश के छोटे बड़े उद्योगों, मैन्युफैक्चरर्स, कारीगरों और कामगारों को वैश्विक बाजार में जगह बनाने के लिए नई दिशा दिखाई है। बायोफार्मा, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। उन्होंने उद्योग जगत का आह्वान किया कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की हैवी मशीनरी के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बजट में लाई गई विशेष योजना का लाभ लेते हुए राजस्थान के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अपनी इकाइयां लगाएं। उन्होंने कहा कि इस बजट से प्रदेश के निर्यातकों को नए खुल रहे बाजारों में निर्यात बढ़ोतरी के अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में राजस्थान की संभावनाओं और आवश्यकताओं को पूरा स्थान मिला है। अक्षय ऊर्जा के लिए 30% ज्यादा करीब 32,914 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसी तरह पीएम सूर्य घर योजना को 22,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
बजट में अक्षय ऊर्जा के लिए 32,914 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये पिछले बजट से 30% ज्यादा है। पीएम सूर्य घर योजना को 22,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि से 40,00,000 नए घर सौर ऊर्जा से लाभान्वित होंगे। राजस्थान सौर ऊर्जा में अग्रणी प्रदेश है। इन प्रावधानों से प्रदेश के सोलर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा।
श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति, AIML नीति और डेटा सेंटर नीति लागू की है, इसलिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, AI मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज को दिए गए इंसेंटिव्स का फायदा लेते हुए सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर हब बनने के लिए प्रदेश पूरी तरह तैयार है। कल पेश हुए केंद्रीय बजट में उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए 10,228 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर के संवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान को अब रेलवे के लिए मिली राशि 2013 में मिलने वाले बजट की तुलना में करीब 15 गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 85 स्टेशनों का नवनिर्माण किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में 56,000 करोड़ रूपये की लागत के रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रदेश में विद्युतीकरण का कार्य अब लगभग पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले कुछ समय से कई महत्वपूर्ण ट्रेन चलाई गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक अमिताभ ने बताया कि जोन में 1500 से अधिक किलोमीटर की रेल लाइनों के कार्य जारी हैं, वहीं 1500 किलोमीटर के स्वीकृति के प्रस्ताव और भेजे गए हैं। इसके अलावा 2000 किलोमीटर रेल लाइन का सर्वे का कार्य अभी चल रहा है। उन्होंने बताया कि 4 स्टेशन पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन के लिए तैयार हैं। आने वाले 2 महीनों में 10 और स्टेशन उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएंगे। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज शुरू हुई। लोकसभा में चर्चा के लिए कुल 18 घंटे और राज्यसभा में 16 घंटे निर्धारित किए गए हैं। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने सदन के नियमों का उल्लंघन किया है और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। श्री रिजिजू ने आरोप लगाया कि भारतीय सशस्त्र बलों पर राहुल गांधी की टिप्पणियां अनुचित है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने ये निर्देश दिया है कि पत्रिकाओं या समाचार पत्रों के लेखों को सदन में उद्धृत नहीं किया जा सकता है और सदन में बहस कानून के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस निर्देश के बावजूद विपक्ष के नेता का सदन में इस मुद्दे को उठाने पर अड़े रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन में इस दौरान देर तक हंगामा होता रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने की मुख्य जिम्मेदारी सरपंचों की है। वे आज जयपुर में VBG रामजी लागू करने पर सरपंच संघ की ओर से आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच ग्रामीण विकास की वो मजबूत कड़ी हैं, जिनसे जनता को सबसे अधिक उम्मीदें होती हैं। उन्होंने सरपंचों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि गांव की समस्याओं का समाधान और विकास की नीतियां उनके सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती।
आपके माध्यम से हम राजस्थान को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की जो कल्पना है, उसमें हम विकसित राजस्थान, विकसित हमारा जिला, विकसित हमारा गांव बनाना चाहते हैं। उसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में या एक नागरिक के रूप में हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजना है उनको नीचे धरातल पर, हमारे अंतिम पायदान पर खड़ा उस व्यक्ति को कैसे पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाते हुए उन्हें प्रशासक नियुक्त किया है ताकि विकास की गति बनी रहे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मनरेगा का बकाया पैसा भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को आम जन की समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता से निपटारा करने और कार्यों का फॉलो अप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन सेवा में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का शुभारंभ किया। श्री मांडविया ने कहा कि इसके माध्यम से सरकार युवाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। डॉ. मांडविया ने कहा कि प्रतियोगिता का पहला चरण माई भारत पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं के लिए 17 फरवरी तक खुला रहेगा। इसके बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले युवाओं का चयन किया जाएगा और वे 17 फरवरी से 3 मार्च तक चलने वाले दूसरे निबंध लेखन चरण में शामिल होंगे। इस चरण में युवाओं को विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप केंद्रीय बजट से संबंधित 8 विषय दिए जाएंगे। प्रतियोगिता की योग्यता सूची 10 मार्च को घोषित की जाएगी। विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद करने का मौका भी मिलेगा। झालावाड़ पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन राइड के तहत सरकारी भर्ती परीक्षाओं में रोडवेज की मुफ्त यात्रा योजना में हो रहे फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि इस घोटाले को बस सारथी, परिचालक और रोडवेज की मिलीभगत से अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक ने पुष्टि की कि मामले की गहन जांच की जा रही है ताकि सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
झालावाड़ पुलिस ने बेस्ट के उसी अनुक्रम में 7 लोगों की कल दोबारा गिरफ्तारी हुई है। ये कोटा, जोधपुर, बांसवाड़ा इत्यादि जिलों के रहने वाले हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी राधेश्याम की हुई है, जो कोटा निवासी है। उसके कब्जे से बड़ी संख्या में एडमिट कार्ड प्राप्त हुए हैं। इसमें स्थायी परिचालक जो सिविल डिफेंस के परिचालक होते थे, बाकी पूर्ति करते थे वो एडमिट कार्ड से कि हमारे बस में इतने कैंडिडेट्स ने निःशुल्क यात्रा की। इसमें अभी अनुसंधान और प्रारंभिक पूछताछ के दौरान ये तथ्य सामने आया कि बड़ी संख्या में ऐसे फर्जी एडमिट कार्ड प्राप्त करके और उनको छपवा के वो जमा कराते थे।
और अब मौसम। मौसम विभाग ने आज बांसवाड़ा, बारां और भीलवाड़ा जिले के लिए बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में आगामी 2-3 दिन घना कोहरा रहने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
फिलहाल एक पश्चिम विक्षोभ के असर से कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में अभी भी अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने और कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा अगले 2-3 दिन कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा भी छा सकता है। 9 फरवरी को एक और नया पश्चिम विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर अगले 5-7 दिन में अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहने और कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट पर मीडिया से बातचीत में इसे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की प्रतिबद्धता को साकार करने वाला बताया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्रीय बजट में उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए 10,228 करोड़ रुपए का प्रावधान। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। और मौसम विभाग ने बांसवाड़ा, बारा और भीलवाड़ा जिले के लिए बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।